का था, रूह वही, रूप नया।
फरीदी और लियोनार्ड के भाग चार में आपने सुना कि फरीदी किस तरह नवाब रशीदुज्जमा का भेस बदलकर लियोनार्ड की कही हुई जगह पर फिरौती देने के लिए पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद किस तरह प्रिंस अदनान को फरीदी ने गिरफ्तार करके शराब खाने के एक कैदखाने में बंद कर दिया। क्या हुआ उसके आगे, सुनिए भाग पांच में। थोड़ी देर बाद फरीदी कमरे से निकला। उसने अपना चेहरा चेस्टर के कॉलर में छिपा रखा था। शराब खाने से बाहर आकर उसने चेस्टर के कॉलर गिरा दिए। वो प्रिंस अदनान के भेस में था। उसने फुटपाथ पर कुछ देर खड़े होकर सोचा और फिर एक टैक्सी में बैठकर प्रिंस अदनान के मकान की तरफ चल पड़ा। प्रिंस अदनान जिस मकान में रह रहा था वो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। उसके बारे में आमतौर पर मशहूर था कि वहां भूत प्रेत का साया है। इससे पहले यहाँ एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जो बिल्कुल अकेला था। उसके बारे में लोग कहते थे कि वो इस मकान में रहने वाले भूतों ही की मदद से अमीर हो गया था। ये इमारत दरअसल शाही दौर की थी और शहर के एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखती थी। किसी वजह से इस खानदान वालों ने उसे बेच दिया। वजह कुछ भी रही हो, लेकिन आम लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि उसका बेचना दरअसल भूतों वाला मामला ही था। जिस शख्स ने उसे खरीदा था उसने उसे किराए पर उठा दिया। किराएदार जो मकान में कुछ नौकरों के साथ रहता था, एक दिन सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। इस वाकये से उस मकान के भुतहा होने की शोहरत में और इजाफा हो गया। फिर उस मकान को प्रिंस अदनान ने किराए पर लिया और वहीं रहने लगा। मकान यूं ही कुछ संदिग्ध लगता था, फिर भूतों वाले मामले ने उसे और भी भयानक बना दिया था। प्रिंस अदनान जब उसे किराए पर ले रहा था तो आसपास के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। फरीदी इस इमारत के सामने पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुका। मेन गेट पर हाई पावर का बल्ब जल रहा था। एक तरफ चौकीदार बैठा ऊंघ रहा था। फरीदी खड़ा कुछ देर सोचता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके कदम एक ऐसे शराबी की तरह लड़खड़ा रहे थे जैसे ज्यादा पी गया हो। उसने चौकीदार के पास पहुंचकर उसे ठोकर मारी। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। सुअर का बच्चा सोता है, फरीदी बिगड़ी हुई आवाज में चीखा। अरे नहीं हुजूर, चौकीदार ने सहम कर जवाब दिया। हुजूर का बच्चा, उल्लू का पट्ठा, फरीदी बड़बड़ाता हुआ अंदर आ गया। अब उसने भद्दी आवाज में एक अंग्रेजी का गाना गाना शुरू कर दिया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी आवाज से सारी इमारत गूंज रही हो। शोर सुनकर दो पहलवान उसके करीब आकर खड़े हो गए। क्या बात है सरदार, एक आदमी ने गुजराती में पूछा। तुम्हारा सिर, फरीदी ने गुजराती में झल्ला कर कहा। आइए मैं आपको आपके सोने के कमरे में पहुंचा दूं, पहला आदमी बोला। अबे ओ गधे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, फरीदी झूमता हुआ बोला। मुझे मुर्गी का बच्चा समझा है क्या, मुझे मेरे दड़बे में पहुंचा देगा हुँ? दोनों आदमियों ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अच्छा तुम दोनों मुस्कुराते हो, फरीदी ने जेब से पिस्तौल निकाल कर कहा। हंजाब, दोनों गिड़गिड़ाते हुए उसके कदमों पर गिर पड़े। फरीदी ने एक जोरदार कहकहा लगाया और पिस्तौल जेब में रख ली। उठो उठो, तुम दोनों मेरे बाप हो, उसने गरज कर कहा। दोनों खड़े होकर कांपने लगे। जाओ राजू को भेज दो, फरीदी ने कहा। राजू, दोनों ने एक साथ कहा और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हाँ हाँ राजू, फरीदी झूमता हुआ बोला। कौन राजू, एक ने कहा। तुम राजू को नहीं जानते, तब तुम काली बिल्ली की औलाद मालूम होते हो। आओ फौरन उसे लेकर आओ, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। सरदार हम राजू को नहीं जानते, कौन है राजू, एक ने बोला। फरीदी सोच में पड़ गया कि प्रिंस अदनान ने राजू वाली बात झूठ कही थी। अगर वो शराबी का रोल ना कर रहा होता तो इसी दौरान बुरा वक्त आ जाता। वो सोचने लगा कि कहीं ट्रांसमीटर वाली बात भी गलत ना हो। तुम लोग बिल्कुल गधे हो जो राजू को नहीं जानते। राजू मेरी जान, मेरी महबूबा है। अभी वो होटल में मेरे साथ शराब पी रही थी, फरीदी ने कहा। ये बात है, एक ने मुस्कुरा कर कहा। आप हमें उसके घर का पता बताइए, हम अभी उसे उठा कर लाते हैं।
अरे वो तो जन्नत में रहती है पगले,
फरीदी ने लड़खड़ा कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही पल वो गिर पड़ा। अरे सरदार, सरदार, दोनों उस पर झुकते हुए एक साथ बोले।
अरे बेहोश हो गए,
एक ने कहा।
कभी इतनी पीते नहीं है, मालूम नहीं क्या बात है,
दूसरे ने कहा।
कोई औरत साथ थी ना, इसीलिए।
चलो इन्हें उठाकर इनके सोने के कमरे में डालाएं, पहला मुस्कुरा कर बोला। दोनों फरीदी को उठाकर सोने के कमरे में लाए और लिटा दिया। उनके चले जाने और थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद फरीदी उठा और कमरा अंदर से बंद कर दिया। ये एक बहुत ही खूबसूरत सजा सजाया कमरा था। सोने के पलंग के करीब एक छोटी सी मेज पर रेडियो रखा था। फरीदी को ट्रांसमीटर की तलाश थी। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा, मगर ट्रांसमीटर का कहीं पता न चला। वो सोचने लगा, खैर कुछ परवाह नहीं, अब तो प्रिंस अदनान उसकी कैद में ही है। अगर वो आज सीधी तरह नहीं बता सका तो क्या हुआ, कल उसकी चमड़ी खींच ली जाएगी। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक मेज पर रखे हुए रेडियो में हल्की हल्की खरखराहट पैदा होने लगी। वो चौंक पड़ा। रेडियो अपने आप कैसे चलने लगा? वो झपट कर रेडियो के करीब पहुंचा और रेडियो में से किसी आदमी की आवाज सुनाई देने लगी। बोलने वाला अंग्रेजी में कह रहा था, तुमने अभी तक खबर नहीं दी, तीसरी बार तुमसे कह रहा हूं, जवाब दो कि क्या हुआ। दोपहर को तुमने खबर दी थी कि वो आ गया है। फरीदी गौर से रेडियो का जायजा लेने लगा। अचानक उसका हाथ एक जगह पड़ा और एक खटके से रेडियो में एक खाना सा खुल गया। जहां फरीदी का हाथ लगा था वहां एक छोटा सा और सरसरी तौर पर देखने पर नजर न आने वाला स्विच लगा हुआ था। फरीदी ने स्विच दबाया और खाना फिर बंद हो गया। उसने खाने को फिर खोला और मुंह लगाकर कहने लगा,
मैंने जबरदस्त धोखा खाया। कमबख्त ने सादे कागजों के ऊपर कुछ नोट लगा रखे थे। नोटों की गड्डियों में ऊपर नीचे नोट और बीच में सादा कागज था।
तस्वीरों का क्या हुआ, रेडियो से आवाज आई।
निगेटिव समेत ले गया, फरीदी ने कहा।
ओहो तुम बिल्कुल बेवकूफ हो,
रेडियो से आवाज आई।
क्या लड़की भी वापस कर दी?
नहीं नहीं, ये मेरी पहली गलती है, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे, फरीदी ने कहा।
खैर जाने दो, रेडियो से आवाज आई। लड़की को हिफाजत से रखना और अगर हो सके तो उस गधे को भी उठा लाओ, और हाँ फरीदी से होशियार रहना।
वो तो बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया है, अगर हुक्म हो तो कत्ल कर दिया जाए,
फरीदी ने कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो,
मैं उसका कायदे से इंतजाम कर रहा हूँ, रेडियो से आवाज आई। फरीदी ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया और बोला, कल दिन मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा, मेरा इरादा है कि उस नवाब के बच्चे को एक अच्छा सबक पढ़ाऊं। उसे सबक देने का सबसे आसान तरीका तुम्हें बताता हूं, रेडियो से आवाज आई। लड़की तुम्हारे कब्जे में है ही, किसी के साथ उसकी तस्वीर खींचकर उसे रिहा कर दो। तस्वीर की एक एक कॉपी उसके हर रिश्तेदार के पास भिजवा देना।
फरीदी उलझन में पड़ गया। अदनान ने कहा था कि उसे लड़की के अपहरण के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। लियोनार्ड ने सीधे उसे गायब कर दिया है और उसी ने उसे कहीं रख भी रखा है।
आपका यह ख्याल बहुत अच्छा है, ऐसा ही होगा, फरीदी ने कहा। और कोई हुक्म?
नहीं, अब बस कल रात को फिर बात होगी, रेडियो से आवाज आई और कमरे में पूरे तौर से सन्नाटा छा गया। फरीदी ने खाना बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि आखिर गजाला का पता कैसे लगाए। अगर वो उसी मकान में किसी जगह कैद है तब तो आसानी से पता चल जाएगा, और अगर यहां न हुई तो उसके लिए उसे दोबारा अदनान के साथ सख्ती करनी पड़ेगी। उसने अदनान के साथ जो रवैया अपनाया था वो उसे बिल्कुल पसंद न था, लेकिन इसके अलावा कोई और सूरत भी तो न थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस किस्म के लोग मारने पीटने से ही काबू में आते हैं, और कभी कभी तो मारपीट भी उन्हें सीधे रास्ते पर लाने में बेकार साबित होती है। फरीदी रात भर जागता रहा। जब मकान के सारे लोग सो गए तो वो उठा
और मकान का कोना कोना छान मारा, मगर गजाला का कोई पता न चला। दूसरे दिन सुबह फरीदी अपने घर पहुंचा। उसने हमीद को पहले ही खबर भिजवा दी थी और अब उसके आने का इंतजार कर रहा था। हमीद की गैर मौजूदगी में घर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नाश्ते की मेज पर पहुंचकर भी उसने हमीद की कमी महसूस की। क्यों भाई, ये बंगाली रसगुल्ले कहां से आए थे? फरीदी ने मेज के करीब खड़े हुए नौकर से पूछा। उसे बंगाली रसगुल्ले बेहद पसंद थे। चीफ साहब ने आपके लिए भिजवाए हैं, नौकर ने जवाब दिया। फरीदी ने रसगुल्ला उठाया लेकिन फिर फौरन ही रख दिया। वो कुछ सोच रहा था। ट्रांसमीटर पर बोलने वाले के शब्द अब तक उसके कानों में गूंज रहे थे और आज से पहले कभी भी चीफ इंस्पेक्टर साहब ने इतनी मेहरबानी नहीं की थी। फरीदी ने एक रसगुल्ला उठाकर करीब बैठे हुए कुत्ते के आगे डाल दिया। कुत्ता उसे खाकर दोबारा फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी ने एक और डाला। धीरे धीरे उसने सारे रसगुल्ले खिला दिए। थोड़ी देर बाद कुत्ता ऊँघने लगा। फरीदी चाय के घूंट ले लेकर गौर से उसे देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक कुत्ता भौंका और एक बड़े आईने में अपना चेहरा देखकर उस पर झपटा। वो आईने के सामने इस तरह उछल कूद कर रहा था जैसे किसी दूसरे कुत्ते से लड़ रहा हो। फरीदी के होंठों पर थोड़ी मुस्कुराहट पैदा हुई। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। दो नौकरों ने कुत्ते के शोर के बारे में उससे पूछा, लेकिन उसने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि उसने चूहा पकड़ लिया है। उसने दूसरे कमरे में जाकर पिस्तौल निकाला और फिर कमरे में लौट आया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कुत्ता पागल हो गया हो। फरीदी ने पिस्तौल चला दिया। कुत्ते ने एक छलांग लगाई और जमीन पर गिर गया। गोली चलने की आवाज सुनकर कई नौकर कमरे की तरफ दौड़े। फरीदी का चेहरा लाल हो रहा था, लाल लाल आंखें उबली पड़ रही थी। उसने नौकरों की तरफ देखकर एक डरावना कहकहा लगाया और उन्हें भी गोली मार देने की धमकियां देने लगा। सारे नौकर डरकर इधर उधर चले गए। फरीदी तरह तरह की आवाजें निकालता हुआ उछल कूद कर रहा था। इतने में हमीद आ गया। फरीदी को इस हालत में देखकर उसे हंसी आ रही थी। क्यों बे उल्लू के पट्टे, तू क्यों हंस रहा है, फरीदी ने चीख कर कहा। हमीद फौरन संजीदा हो गया। फरीदी ने आज तक उससे इस तरह बात ना की थी। अबे बोलता क्यों नहीं बे, फरीदी फिर चीखा। इस बार हमीद सिर से पैर तक कांप गया। उसने फरीदी की आंखों में एक बहुत ही भयानक किस्म की चमक देखी। अबे बोल, फरीदी फिर गरजा। क्या 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 बोलूं, हमीद ने डरते डरते कहा। अबे वही बोल जो तुझे शैतान की मौसी ने सिखाया है। अबे बोल, बंदर की औलाद, गौड़ियाले सांप के भांजे, बोल। हमीद को फिर हंसी आ गई और फरीदी ने जेब पिस्तौल से निकालकर फायर कर दिया। गोली हमीद के कान के दाहिनी तरफ से बड़े करीब से निकल गई। हमीद बदहवास होकर भागा। फरीदी उसके पीछे दौड़ रहा था। हमीद ने बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। फरीदी दरवाजा पीटने लगा। अबे ओ दरवाजा खोल वरना कच्चा खा जाऊंगा, फरीदी चीखा। घर के सारे नौकर उसकी ये हालत देखकर इधर उधर छिपते घूम रहे थे। अच्छा बेटा ना खोल, दफ्तर से लौट कर तेरी मरम्मत करूंगा, फरीदी ने कहा और वहां से हट गया। उसने पायजामे और कमीज पर टाई बांधी, एक पैर में काला जूता पहना और दूसरे में कत्थई और सिर पर गांधी कैप रख कर दफ्तर की तरफ ही चल पड़ा। रास्ते भर उसे लोग देख देख कर हंसते और वो उन्हें मुंह चढ़ाता रहता। दफ्तर में घुसते ही उसने हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया। I am the best, वो चीख चीख कर गा रहा था। दफ्तर के सारे कर्मचारी उसके पास इकट्ठे हो गए थे। गाते गाते उसने एक हाथ कमर पर रखा और दूसरे सिर पर अंग्रेजी गाना गाता हुआ हिंदुस्तानी अंदाज में ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। लोग खड़े होकर हंस रहे थे। बहुतेरों के जहन में ये बात आई कि वो शायद जासूसी के सिलसिले में कोई नई चाल चल रहा है। ये सिलसिला जारी ही था कि हमीद भी दफ्तर पहुंच गया। लोग उससे पूछने लगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहरुपिया हरगिज नहीं हो सकता, हमीद ने कहा। अभी अभी उन्होंने मुझ पर पिस्तौल से वार किया था, अगर मैं एक तरफ ना होता तो मेरी खोपड़ी ही साफ हो गई होती। ये सुनकर बहुत से लोग डर कर फरीदी के पास से हट गए। तुम आ गए मेरे बेटे, भाइयों ये है मेरे पहले शौहर की औलाद, फरीदी हमीद की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला।
फिर एक जोरदार हंसी हुई और हमीद झेप कर वहां से हट गया। आखिरकार ये हुल्लड़ इतना बढ़ा कि मिस्टर जैक्सन को अपने कमरे से बाहर निकलकर आना पड़ा। लोग उसे देख देख कर इधर उधर फैल गए। वेल मिस्टर फरीदी, क्या बात है? जैक्सन ने उसे इस तरह देख कर हैरत जाहिर करते हुए कहा। दिल का मेरी जान, तुम्हारे इश्क में ये हाल हो गया है। फरीदी ने उसकी तरफ बढ़कर उससे लिपटने की कोशिश की। ये क्या बदतमीजी है? जैक्सन ने उसे हटाते हुए गरज कर कहा। मार डालो मेरी जान, बस इसी अदा पर तो मेरी जान जाती है, फरीदी ने अपने सीने पर हाथ मार कर कहा। अरे इसे क्या हो गया है? जैक्सन ने बेबसी से कहा। इश्क हो गया है, इश्क! फरीदी इतने जोर से चीखा कि उसकी आवाज भर्रा गई। जैक्सन ने लोगों को पुकारा, वहां भीड़ लग गई। शायद इसने बहुत पी ली है, जैक्सन ने कहा। नहीं साहब, शायद इनका दिमाग खराब हो गया है, एक आदमी बोला। अचानक दिमाग कैसे खराब हो गया है? जैक्सन ने पूछा। मुझे नौकरों की जबानी मालूम हुआ कि सुबह नाश्ते के वक्त अचानक उन पर एक किस्म का दौरा पड़ा, हमीद ने कहा। पहले इन्होंने कुत्ते को मार डाला और फिर मुझ पर भी गोली चलाई। अरे, जैक्सन ने कहा और डरी नजरों से फरीदी की तरफ देखने लगा। फरीदी अब भी खड़ा डरावने अंदाज में हंस रहा था। जैक्सन ने लोगों की ओर इशारा किया। दो तीन लोग फरीदी पर टूट पड़े और थोड़ी देर बाद उसे बेबस कर दिया और फिर उसे एक कुर्सी से बांध दिया। फरीदी को जितनी भी जबानें आती थीं, वो उनमें एक के बाद एक बेतहाशा गालियां बक रहा था। कुछ ये भी बता सकते हो कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया है? जैक्सन ने कुछ सोचते हुए हमीद से कहा। मैंने इसके बारे में नौकरों से पूछा था। टोस्ट, अंडे, जलेबी, मक्खन और कुछ सूखे मेवे, और हाँ, बंगाली रसगुल्ले जो चीफ इंस्पेक्टर साहब ने भेजे थे। मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया था, चीफ इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा। जी, हमीद ने चौंक कर कहा। हाँ भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं भिजवाया। अच्छा, तो ये बात है, ये सब उन्हीं रसगुल्लों की करामात है, ये जरूर उनके किसी दुश्मन की हरकत है, हमीद ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या उन रसगुल्लों में से कुछ बचा भी है? जैक्सन ने कहा। मेरे ख्याल से तो नहीं। इन्हें फौरन अस्पताल ले चलो, जैक्सन ने कहा। इस दौरान फरीदी बेहोश हो चुका था। लोगों ने उसे कुर्सी से खोला और स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल की तरफ ले चले। चूंकि अस्पताल करीब था, इसलिए उन लोगों ने पैदल ही जाना मुनासिब समझा। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि फरीदी स्ट्रेचर से कूदकर भाग गया। लोगों ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन उसने उन्हें पेंच दर पेंच गलियों में ऐसे ऐसे चक्कर दिए कि उन्हें थक हार कर लौट आना पड़ा। फरीदी दिन भर इधर उधर छिपता रहा। अंधेरा होते ही वो उसी शराबखाने में जा पहुंचा। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह प्रिंस अदनान से गजाला का पता मालूम हो जाए, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। थक हार कर उसने अपने कमरे का रुख किया। वहां उसने प्रिंस अदनान का भेस बदला और उसके मकान की तरफ रवाना हो गया। आज उसने शराबियों की नकल नहीं की। फाटक पर पहुंचते ही उसने वही दोनों आदमी देखे जो उसे पिछली रात उठा कर ले गए थे। सरदार, उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, उस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, सुबह से कुछ नहीं खाया और शाम से दीवार पर अपना सर पटक कर जख्मी हो गई है। लड़की का जिक्र सुनकर फरीदी के कान खड़े हो गए। अच्छा चलो, चलकर देखता हूं, फरीदी ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो थोड़ी दूर चलता रहा, फिर अचानक चीख मार कर गिर पड़ा। दोनों उसकी तरफ लपके, क्या हुआ सरदार? चलते वक्त पैर मुड़ गया। अरे जरा पैर तो खींचो, शायद कोई नस चढ़ गई है। एक ने उसका पैर पकड़कर दो तीन झटके दिए। फरीदी मुश्किल से खड़ा हुआ और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। अरे आगे चलो भाई, तुम कब तक मेरे पीछे चलते रहोगे? फरीदी ने झल्ला कर कहा। मेरे ख्याल से तो इस वक्त आप आराम कीजिए, सुबह देखा जाएगा, एक ने कहा। फालतू बको मत, चलो चलो, चलकर उसे देखें, कहीं खुदकुशी ना कर बैठे, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वे दोनों आगे आगे चलते रहे और फरीदी उनके पीछे लंगड़ाता हुआ चल रहा था। एक कमरे में पहुंचकर दोनों ने फर्श पर बिछे हुए कालीन को हटाया। उस जगह पर जुड़े हुए तख्ते को हटाने लगे। तख्ता हटते ही एक तहखाना सा नजर आया। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। फरीदी भी धीरे धीरे कराहता हुआ उनका साथ दे रहा था। उतरने के बाद वो एक बहुत बड़े से कमरे में पहुंचे जहां चारों तरफ बहुत से छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। दोनों में एक ने बढ़कर एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में बल्ब जल रहा था। दोनों गेट के दोनों तरफ खड़े हो गए और प्रिंस अदनान लंगड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। एक औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसने आहट सुनकर भी अपना सिर ऊपर नहीं किया। फरीदी फिर गेट की तरफ वापस लौटा और दोनों को चले जाने का इशारा करके वहीं वापस खड़ा हो गया। उसने धीरे से औरत के सिर पर हाथ रखा। वो उछल कर खड़ी हो गई। ये गजाला थी।
खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना,
वो बिफर कर बोली। उसके माथे के जख्म पर खून जम गया था। बाल उलझे हुए, चेहरा वीरान था। आंखें किसी डरी हिरनी की तरह मालूम होती थी। ये तुमने अपना सिर क्यों फोड़ लिया? फरीदी ने धीरे से पूछा।
तुझसे मतलब?
वो गरज कर बोली। खाना क्यों नहीं खाया? मेरी खुशी। आखिर इस तरह बिगड़ क्यों रही हो? फरीदी ने कहा।
जाकर अपना काम करो, मैं बेकार बातें नहीं करना चाहती।
क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ?
अच्छा, कब से?
गजाला तेवर में बोली। जिस दिन से तुम्हें देखा है।
अच्छा, तो कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इस किस्म की बात फिर की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी या अपना ही गला घोंट लूंगी।
हुस्न गुस्से में बड़ा भला मालूम होता है।
दूर हो जाओ यहां से, कमीने कुत्ते,
वो गरज कर बोली। देखो, मेरा कहना मान लो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ऐसी आजादी पर तो मैं मौत को अच्छा समझती हूँ।
तुम्हारे इस ख्याल से मुझे खुशी हुई। घबराओ नहीं, तुम बहुत जल्दी ही रिहा हो जाओगी।
गजाला हैरत से उसका मुंह देखने लगी। ये चीज उसकी समझ से बाहर थी कि प्रिंस अदनान अचानक कैसे बदल गया।
मैं अदनान नहीं, फरीदी हूँ। अदनान मेरी कैद में है।
ओह, तो अब तुम ये दूसरी चाल चल रहे हो, गजाला ने कुढ़ कर कहा। लेकिन इतना याद रखो, तुम मुझ पर किसी भी तरह कामयाब ना हो सकोगे।
फरीदी हंसने लगा। उसने सारी कहानी उसे कह सुनाई। वो हैरत से मुंह खोले सुन रही थी।
ये तो बहुत बुरा हुआ कि उन कमबख्तों ने वालिद साहब को भी इसकी खबर दे दी,
गजाला बोली। अरे तुम इत्मीनान रखो, मैंने उन्हें तुम्हारी बेगुनाही का यकीन अच्छी तरह दिला दिया है।
मगर मैं किस तरह यकीन कर लूं कि आप प्रिंस अदनान नहीं हैं? गजाला अविश्वास से बोली। ये लो, ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने प्रिंस अदनान से हासिल की हैं। फरीदी ने जेब से एक लिफाफा निकालकर गजाला की तरफ बढ़ा दिया। उस लिफाफे में तस्वीरें थीं जो वो देखने लगी। अब लाओ, मैं इन्हें जला दूं। फरीदी ने उसके हाथ से तस्वीरें लेकर जला दी।
कहो, अब यकीन आया?
गजाला ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे यहां से छुटकारा कब मिलेगा? वो बोली।
बहुत जल्द। सिर्फ वो शख्स कब्जे में आ जाए जो इस सारे गोरख धंधे का सरगना है।
हाँ, तो ये बताओ कि तुम उस दिन होटल से अचानक गायब किस तरह हो गई थी?
ये भी एक अजीब गरीब दास्तान है। मैं जैसे ही बाथरूम से निकली, मुझे वालिद साहब दिखाई दिए। मैं परेशान हो गई। मैं दरअसल उनसे ये कहकर आई थी कि मैं खाला के यहाँ दिल्ली जा रही हूँ। उन्होंने वहां मेरी मौजूदगी का सबब पूछा, जिसका मैं कोई जवाब न दे सकी। उन्होंने मुझसे वापस चलने के लिए कहा। मैं उनके साथ हो ली। बाहर टैक्सी खड़ी थी, हम दोनों उसमें बैठकर चल दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ लिए जा रहे हैं। फिर मुझे कुछ अच्छी तरह याद नहीं कि मैं इस कैदखाने में किस तरह पहुंची।
गजाला खामोश हो गई।
और यही वजह है कि अब जल्दी से किसी बात पर यकीन कर लेने को जी नहीं चाहता।
लेकिन मेरी बातों पर यकीन ना करने की भी कोई वजह नहीं हो सकती। मैं अपना मेकअप बिगाड़ना नहीं चाहता, वरना अभी अपनी असली सूरत भी दिखा देता। गजाला खामोश हो गई।
आओ, तुम्हारा जख्म धोकर पट्टी कर दूं, फरीदी ने कहा।
गजाला कुछ नहीं बोली। स्टूल पर रखे पानी का जग फरीदी ने उठाया और अपना रुमाल तर करके जख्म धोने लगा। गजाला आंखें बंद किए बैठी थी। दो मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों से निकलकर चेहरे पर बह चले।
अरे तुम रोती क्यों हो?
घबराओ नहीं, तुम्हें यहां सिर्फ एक दो दिन और रहना पड़ेगा। गजाला फिर कुछ ना बोली। ठहरो, मैं पट्टियां और बैंडेड ले आऊं, फरीदी ने कहा और कमरे से निकल आया। अभी वो कुछ कदम चला था तभी उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई अंग्रेजी में कुछ कह रहा हो।
वो पलट पड़ा। जिस कमरे से आवाज आ रही थी उसके शीशों से झांक कर उसने देखा कि एक शख्स उसकी तरफ पीठ किए बैठा कुछ पढ़ रहा था। फरीदी ने दरवाजा खोलना चाहा मगर बाहर से ताला लगा था। फरीदी ने इतना अंदाजा जरूर लगा लिया कि वो कोई अंग्रेज है। फरीदी तहखाने से निकलकर उन दोनों आदमियों को तलाश करने लगा। दोनों एक कमरे में बैठे शराब पी रहे थे। फरीदी को देखते ही घबरा कर खड़े हो गए। उनके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे फरीदी अचानक कमरे में पहुंच गया हो। आज जी भर के पियो मेरे शेरू, आज मैं बहुत खुश हूँ, फरीदी ने कहा। लेकिन पहले जरा एक काम कर दो। कहिए सरदार, वो बोला। फर्स्ट एड बॉक्स तो लिया और नंबर 12 की चाबी भी। उनमें से एक बाहर चला गया और दूसरे ने एक चाबी निकालकर फरीदी को दी। फरीदी एक कुर्सी पर बैठकर गए हुए आदमी का इंतजार करने लगा। कुछ मिनट बाद वो वापस आ गया। उसके हाथ में मरम पट्टी का सामान रखने वाला एक बक्स था। फरीदी बक्स को लेकर तहखाने की तरफ चला गया और दोनों फिर बैठकर शराब पीने लगे। फरीदी ने गजाला की मरहम पट्टी की और दूसरे कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही वो दरवाजा खोल कर अंदर गया उसके मुंह से हैरत की चीख निकल गई और चेहरा खुशी से झूमने लगा। अंदर बैठा अंग्रेज जैक्सन था। वो देखने में बहुत दुबला और कमजोर लग रहा था। फरीदी को देखकर उसने नफरत से मुंह सिकोड़ लिया। तो मेरा शक सही निकला। कहिए मिस्टर जैक्सन, कैसे मिजाज हैं? फरीदी ने कहा। ठीक हूं, जैक्सन ने लापरवाही से कहा। जैक्सन उसकी तरफ देखने लगा। आप यहां किस तरह आए? वो ये भी भूल गया था कि इस वक्त वो प्रिंस अदनान के भेस में है। क्या मतलब? क्यों मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? अरे मैं फरीदी हूं, फरीदी ने झुककर धीरे से कहा।
अरे,
जैक्सन उछलकर खड़ा हो गया। जी हाँ, मगर तुम जी हाँ, मैं प्रिंस अदनान के भेस में हूँ और वो मेरी कैद में है। जैक्सन फरीदी से लिपट गया। मैं सच कहता हूँ मिस्टर फरीदी कि खुदा के बाद मुझे सिर्फ तुम्हारी जात से इसकी उम्मीद थी, जैक्सन मोहब्बत से बोला। लेकिन आप यहाँ कैसे? फरीदी ने पूछा। अस्पताल से छुट्टी होने में कुछ ही दिन बाकी थे कि अचानक एक दिन मैंने खुद को यहाँ इस कोठरी में पाया और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। आप कुछ बता सकते हैं कि आप किसकी कैद में हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं,
जैक्सन ने कहा। आप लियोनॉर्ड की कैद में हैं।
लियोनॉर्ड? वो यहां कहां?
वो यहां के नवाबों और राजाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आया हुआ है और आजकल आपका रोल अंजाम दे रहा है।
क्या मतलब?
वो आपके भेस में जासूसी विभाग के सुपरिटेंडेंट का फर्ज निभा रहा है। जैक्सन हैरत से फरीदी का मुंह देखने लगा।
मिस्टर फरीदी, अगर तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया तो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी ब्रिटिश एम्पायर के बहुत बड़े आदमी हो गए,
जैक्सन ने फरीदी का हाथ दबाते हुए कहा। अच्छा, अब थोड़ी देर ठहरिए, मैं इसी वक्त आपको ले चलूंगा और आज ही रात को लियोनॉर्ड को गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा, वरना मालूम नहीं कल क्या हो। बहुत चालाक आदमी है। फरीदी तहखाने से निकलकर सीधा प्रिंस अदनान के सोने वाले कमरे में गया और ट्रांसमीटर खोलकर उसके सामने बैठ गया। कहो, क्या बात है? ट्रांसमीटर से आवाज आई। सब ठीक है, फरीदी बोला। लड़की की दूसरी तस्वीरें ले ली गई हैं। आज वो दीवार से सिर टकराकर काफी जख्मी हो गई थी। इन सब बातों की परवाह ना करो, ये बताओ किसी और ने भी संपर्क किया या नहीं?
अभी तक तो नहीं,
फरीदी बोला। अच्छा, कल मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। और हाँ, एक नई खुशखबरी सुनो, फरीदी पागल हो गया है।
वाकई?
फरीदी चहक कर बोला। हाँ, मेरी स्कीम कामयाब हो गई। अब यहाँ तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। कल रात को ठीक 9 बजे अपने कमरे में मौजूद रहना। ट्रांसमीटर से आवाज आई और फिर बंद हो गई। फरीदी ट्रांसमीटर बंद करके उस कमरे में आया जहां दोनों शराब पी रहे थे। वो दोनों जमीन पर औंधे पड़े थे और करीब ही 3-4 खाली बोतलें पड़ी थी। फरीदी जैक्सन और गजाला को लेकर सीधा कलेक्टर के बंगले पहुंचा। रात के लगभग 11 बजे थे। कलेक्टर सो चुका था लेकिन फरीदी के कहने पर नौकरों ने उसे जगा दिया।
फरीदी और जैक्सन की दास्तान सुनकर कलेक्टर उछल पड़ा। उसी वक्त एक घंटे के अंदर अंदर मिस्टर जैक्सन के बंगले पर छापा मारने का इंतजाम किया गया। लियोनार्ड पर अचानक उस वक्त पुलिस टूट पड़ी जब वो जैक्सन के भेस में उसके सोने वाले कमरे में पड़ा खर्रांटे ले रहा था। उसी वक्त फरीदी ने प्रिंस अदनान को भी शराबखाने से लाए जाने का इंतजाम किया। फिर दोनों हवालात में बंद कर दिए गए। फरीदी ने उसी रात को नवाब रशीदुज्जमा को तार दिलवाया। दूसरे दिन सुबह वे भी पहुंच गए। गजाला शर्मिंदगी की वजह से सिर नहीं उठा रही थी। रशीदुज्जमा उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। मगर जनाब, हमीद फरीदी से बोला, अगर उस दिन कहीं मैं आपके पिस्तौल का निशाना बन गया होता तो इस वक्त आपकी कामयाबी पर तालियां कौन बजाता? अच्छा, तो क्या आप मुझे इतना अनाड़ी निशानेबाज समझते हैं? फरीदी बोला, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने पागलपन का इतना अच्छा रोल आज तक किसी को करते नहीं देखा। हमीद ने कहा, अरे तुमने अभी देखा ही क्या है, जरा कान इधर लाइए, हमीद ने धीरे से कहा। फरीदी सिर झुकाकर सुनने लगा। खजाला के बारे में क्या ख्याल है? हमीद ने धीरे से उसके कान में कहा और फरीदी ने उसकी पीठ पर एक घूंसा जड़ दिया। आप सुन रहे थे कहानी फरीदी और लियोनार्ड, और इसे लिखा था इब्ने सफी ने। आवाज दी नैनी दीक्षित ने।